हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम नौवा स्कंद बीसवा अध्याय और बारहवा श्लोक है 9.20.12। व्यक्त राजन्य तन्या विदम्य त्वां सुमध्यमे नहि चेतः पौरवाना अधर्मे रमते क्वचित। व्यक्तं राजन्यतनयाम् वेदमि अहम् त्वाम् सुमध्यमे नहि चेत पौरवानाम् अधर्मे रमते क्वचित्। व्यक्तम् राजन्यतनयाम् वेदमि अहम् त्वाम् सुमध्यमे नहि चेत पौरवाना अधर्मे रमते क्वचि। व्यक्तं राजन्यं तनया वेदम्यं त्वां सुमध्यमे नहि चेत पौरवाना अधर्मे रमते क्वचि। माता जी व्यक्तम राजन्यतनया वेदम्यं त्वां सुमते नहीं चेत पौरवाणां अधर्मे रमते कथे व्यक्तम राजन्यतनया वेदम्यं त्वां सुमध्यमे व्यक्तम ऐसा लगता है राजन्यतनया क्षत्रिय की पुत्री वेदवी अनुभव कर सकता हूँ। अहम मैं त्वाम तुमको सुमध्य में हे अतीव सुंदरी न नहीं ही निश्चय ही चेत मन पौरवाणाम पूर्वंती लोगों का अधर्मे अधर्म में रमते भोग करता है कचित कभी भी। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा है। ये दुष्मंत महाराज बोल रहे हैं, हे अतीव सुंदरी मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो, क्योंकि मैं पुरुवंशी हूं अतएव मेरा मन कभी भी अधार्मिक रीति से किसी वस्तु का भोग करने की चेष्टा नहीं करता। तात्पर्य महाराज दुष्मंत ने अप्रत्यक्ष रूप से शकुंतला से विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उसे लगा कि शकुंतला किसी क्षत्रिय की पुत्री है। क्योंकि इस श्लोक का तात्पर्य जो है शिला प्रभुपाद जी ने दिया है केवल दो लाइन का और आगे पीछे अनेक श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, तो मैं और एक आगे का श्लोक जो 15वां है उसको भी उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना चाहूंगा। 15वां श्लोक का अनुवाद आगे के जो दो श्लोक छोड़ के हैं। राजा दुष्मंत ने उत्तर दिया, हे सुंदर भुवों वाली शकुंतला, तुमने महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा आतिथ्य तुम्हारे कुल के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त राजा की कन्याएं सामान्यतया अपने वर स्वयं चुनती है। तात्पर्य महाराज दुष्मंत का स्वागत करते हुए शकुंतला ने स्पष्ट कहा, आप यहां रुक सकते हैं और हमारा आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह उसने इंगित कर दिया कि वह महाराज दुश्मन को पति रूप में चाहती है। जहां तक दुश्मन की बात थी, वह तो प्रारंभ से ही जब से उसने देखा था शकुंतला को पत्नी के रूप में चाह रहा था, अतः वह पति पत्नी के रूप में मिलने की स्वीकृति स्वाभाविक थी। शकुंतला को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही महाराज दुश्मन ने उसे स्मरण कराया कि राजकन्या के नाते उसे अपना वर खुद स्वयंवर खुली सभा में चुनना चाहिए। आर्य सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें सुप्रसिद्ध राजकुमारियों ने स्वयंवर द्वारा पति चुनाव किया है। उदाहरण सीता देवी ने रामचंद्र जी को पति रूप में चुना और द्रौपदी ने अर्जुन को चुना था। ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं। अतएव सहमति से या खुली प्रतियोगिता में अपना वर चुनने की छूट थी। विवाह 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह करना गंधर्व विवाह कहलाता है। सामान्यतया माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए वर कन्या का चुनाव करते हैं, परंतु गंधर्व विवाह स्वयंवर से होता है। यद्यपि भूतकाल में स्वयंवर द्वारा या सहमति से विवाह होते थे, किंतु विवाह विच्छेद जैसी वस्तु नहीं पाई जाती थी। निसंदेह निम्न जातियों में असहमति होने पर विवाह विच्छेद होता था, किंतु सहमति से विवाह की प्रथा उच्चतम जातियों में भी थी, किंतु क्षत्रिय परिवारों में विशेष रूप से प्रचलित थी। महाराज दुष्मंत द्वारा शकुंतला को स्त्री रूप में ग्रहण करना वैदिक संस्कृति के अनुरूप था। यह विवाह जिस रूप में हुआ उसका वर्णन अगले श्लोकों में होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। तो इस रविवार के श्रीमद् भागवतम सत्र में आए हुए सभी वैष्णवों का स्वागत है राधा गिरधारी मंदिर की ओर से। और मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सब लोग जानते हैं कि मैं इस व्यास आसन पर बैठने के लायक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से और प्रार्थना से मैं ये प्रयत्न करता हूँ इस सेवा करने का। और पर्टिकुलरली ये जो नौवां स्कंद है ये बहुत ही कठिन है, कठिन स्कंद है। इसमें एक राजा किसी और कन्या को संग के लिए मोहित करता है, आकर्षित करता है। ऐसे बाह्य दृष्टि से सब ऐसे लगेगा कि जैसे ये पूरे स्कंद में व्यभिचार की ही बातें चल रही है। और इन कठिन श्लोकों का इस समय के युग के मानव समाज में, जहां पे लोगों की चेतना जो है वो इतनी दूषित होती है, कैसे कठिन ग्रंथों का एक्चुअली जाहिर में प्रवचन करना, उसको समझाना समझना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं है। किस तरह से हम इस बातों को समझाएं, ये केवल आचार्यों की कृपा है। और इसका उत्तर इन्हीं भागवतम में भी आता ही है बार बार इन श्लोकों में कि ये वास्तव में भोग नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। लगता एक ही है लेकिन चेतना का बहुत ही फर्क है यहाँ पे। जैसे आजकल के लोग भी व्यभिचार करते हैं लेकिन उनकी चेतना का, और यहाँ पे जो राजा लोग जो हमारी दृष्टि से व्यभिचार जैसा लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन चेतना में बहुत अंतर होने के कारण ये व्यभिचार नहीं है, ये धर्म है। और ये धर्म करते हुए ये लोग सब गोलक वृंदावन या वैकुंठ या मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं। अन्यथा ऐसे ही कार्यों को करके कोई जा नहीं सकता है। लेकिन इसमें कैसे धर्म है, आज के इस श्लोक से हम थोड़ा स्पष्टीकरण करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दुष्मंत महाराज जो पुरु वंश में आ रहे हैं उसकी कथा चल रही है। कहीं कहीं शास्त्रों में दुष्यंत कहा जाता है इन्हीं महाराज को, और यहाँ पे दुष्मंत लिखा है, म है, वहां कहीं पे य है। कथा उसी व्यक्ति की चल रही है पुरु वंश के दुष्यंत या दुष्यंत महाराज की, जो जंगल में शिकार करते हुए थके हुए एक जगह पे गए तो उन्होंने वहां पे एक सुंदर कन्या को देखा। यह कन्या इतनी सुंदर थी इसकी तुलना नहीं कर सकते हम, क्योंकि यह स्वर्ग की अप्सरा थी। एक्चुअली विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पे तप करने बैठता है, कड़ा सा तप, तब इंद्र को एक शंका उठती है कि कहीं मेरा निरासन लेने के लिए तो ये तप नहीं कर रहा है। और व्यक्ति का स्थिति को देखते हुए इंद्र उसके लिए कोई प्रलोभन भेजेगा, जिस प्रलोभन से वो अपना तप छोड़ दे। अब जब इस युग के सामान्य जन अगर कोई तप करना बैठे तो उसके लिए, उसके प्रलोभन के लिए किसी भी देवता या इंद्र को कोई अप्सरा भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, उसके लिए तो एक अच्छा सा भोजन या प्रसाद भेज दिया तो उसका तप भंग हो सकता है, सामान्य है, क्योंकि आजकल के लोग जप अच्छा करते हैं लेकिन कर रहे हैं। और अगर कोई कहे कि प्रसाद का टाइम हो गया और बहुत अच्छा प्रसाद है, जप कीर्तन छोड़ के हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए छोटा मोटा प्रलोभन बहुत काफी हो जाता है। लेकिन ये जो विश्वामित्र जैसे महर्षि जो थे, हालांकि पहले वो क्षत्रिय राजा थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि के वहां जब उन्होंने एक ऐसी गाय को देखा जो इंद्र के वहां जो गाय थी उसका ही बछड़ा था, वो कामधेनु थी जो सर्व इच्छा पूरी करती थी और सब कुछ प्रदान करती थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती किया और उस जबरदस्ती में वो निष्फल रहे। तब उन्हें ये मन में प्रश्न उठा था कि एक वशिष्ठ मुनि जैसा व्यक्ति मुझ जैसे राजा को, मेरी सारी सेना को प्राप्त कर सकता है और मुझसे भी कई गुना अधिक जो है ऐश्वर्य प्रकट किया उसने, तो ये कैसे संभव होता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये मेरे से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इनकी शक्ति तपोबल से आई है, तो मैं क्यों नाहक का इस भौतिक शक्ति के पीछे पड़ा हुआ हूं, मैं भी क्यों ना तपोबल प्राप्त करूं और तपोबल से अपना जो ऐश्वर्य है वो प्राप्त करूं। तो विश्वामित्र ने तप करना निश्चय किया। अब ऐसे लोग जब तप करना निश्चय करते हैं तो एकदम दृढ़ निश्चय रहते हैं, सब कुछ त्याग करके। हालांकि एक राजा थे जिनके लिए सब कुछ त्याग करना बहुत कठिन होता है, अपना राजपाट, सुंदर पत्नियां, बच्चे, ये सब परिवार को त्याग करना कितना कठिन होता है ये आज के युग के हम लोग तो बड़ी आसान से समझ सकते हैं। सब कुछ त्याग करके वो जंगल में जाके तप करने बैठ गए और घोर तपश्चर्या, दिन रात बिना सोए खाए पिए तपश्चर्या चल रही है। इंद्र से रहा नहीं गया, उसे भी पता था कि ये कोई भोग विलास प्रसाद या भोजन या कोई राज पाठ के चक्कर में तो ये ऋषि मुनि कभी लालायित नहीं होने वाले। इन्हें अगर तपस्या से भंग करना है तो अल्टीमेट वेपन जो है इस भौतिक जगत का वो है स्त्री। सुंदर स्त्री या सुंदर कन्या को किसी भक्त या तपस्वी के पास भेज दो, तब उसकी तपोबल की या भक्ति की परीक्षा होती है। जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन परीक्षाओं में बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं, जैसे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर। उनके पास उनके शत्रुओं ने एक सुंदर कन्या को भेजा था, नवयुवान कन्या को, लेकिन नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर ने जप कीर्तन करते करते उसको ही भक्त बना डाला, उसको ही दीक्षा दे दिया और उसको हरिनाम में प्रवृत्त कर दिया। आगे चल के नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के जीवन में स्वयं माया देवी जो दुर्गा है, हाँ, जिसका अंश मात्र ऐश्वर्य इस जगत में सारी सुंदर स्त्रियों के रूप में है और जो सारे जगत को परेशान किया हुआ है वो स्वयं माया देवी भी खुद आई थी अपने ऐश्वर्य के साथ, अपनी सुंदरता का, बोलता ना एकदम ऊंची कक्षा का सुंदरता और ऐश्वर्य के साथ, श्रृंगार के साथ आई थी। लेकिन श्रीला हरिदास ठाकुर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो उसके सामने भी जप किए और उसको भी दीक्षा दे दिया। और माया देवी भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये कमाल के भक्त है, हाँ, जो मुझे दीक्षा दे दिया, उनको दीक्षा दिया और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में लगा दिया था। ऐसे होते हैं भक्त। लेकिन इन तपस्वियों के लिए, मुनियों के लिए, या मायावादी साधना भक्तों के लिए, या कच्चे कनिष्ठ भक्तों के लिए ये सब संभव नहीं होता है। जब कोई प्रलोभन, और वो भी अगर सुंदर स्त्री के रूप में आ जाए तो असंभव होता है। हालांकि विश्वामित्र कड़ी तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जब आंख खोल के देखा मेनका की ओर, जो पहले दृढ़ निश्चय थे मन में, आंख जब खोली नहीं थी, कि ये जरूर कोई इंद्र की चाल है, जो कन्या कोई आई है और जो पायल वगैरह बांध कर नाच रही है, वो समझ गए थे, बोले मैं इसको आंख खोलकर जलाकर राख कर दूंगा, हाँ, इसको मैं खत्म कर दूंगा, भगा दूंगा, इसको मैं कर्ज करूंगा। पहले कर चुके थे, छोटी मोटी अप्सराओं को श्रापित करके जला दिए थे, बोले इसका भी यही करूंगा। ये सोचकर आंख खोले, लेकिन आंख खोल के जब मेनका को सामने देखे, वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इस सृष्टि के लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कि वो खुद मोहित हो गए। वो सोचने लगे कि अब इसको मैं जलाऊं कैसे, ये तो कितनी सुंदर है। तब उन्होंने स्वीकार कर लिया मेनका से सेवा, हाँ, भोग किया, और उनको एक बेटी होती है शकुंतला। यानी राजर्षि जो थे, जो महर्षि बनने जा रहे थे, वो तपोबल में फेल हुए, वो जितना तपोबल के स्तर पे पहुंचे थे वहां से गिरकर धड़ाम करके वापस धरातल पे नीचे। जैसे मान लो कोई ग्रेजुएट हुआ, फाइनल ग्रेजुएशन के एग्जाम में उसको कंडीशन रखी, तुम पास हो गए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, नहीं तो सीधे पहली कक्षा में जाओगे, बोलो बैठना है क्या? फेल हुए तो सीधे पहली कक्षा में, उनका सारा तपोबल खत्म। भोग विलास जो है वो हमारे पूर्व पुण्य तपोबल को खत्म कर देता है। सब खत्म हो गया, मेनका का जो उद्देश्य था इनका तपोबल खत्म करने का, वो पूरा हुआ। मेनका बोलती है हरे कृष्ण बाय बाय, मैं चली स्वर्ग को, मैं इधर के लिए हूं नहीं और मैं इधर कभी रहूंगी नहीं। इधर मेनका रहती तो क्या होता था पता नहीं, दिल्ली जैसे गैंगरेप कितने होते थे, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है कि पृथ्वी के सामान्य जनों के बीच में ऐसी सुंदर कन्याएं रहे, पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये तपस्वी, ये मेनका चली गई, लेकिन शकुंतला जिसका जन्म हुआ था, जो छोटी सी कन्या थी, वो उधर ही रह गई। अब ये विश्वामित्र क्या सोचे कि अब इसके ध्यान में जाऊंगा तो मैं आगे तप नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपने तपस्वी स्वार्थ के लिए, तपबल के प्राप्ति के स्वार्थ के लिए उसका त्याग कर दिया, उस लड़की का, जो एक अप्सरा की बेटी थी शकुंतला, और ये भी अप्सरा ही है। तो उसको कण्व ऋषि जो थे उस समय, वो अपनी जिम्मेदारी समझकर छोटी सी बच्ची जो उनको जंगल में मिली, उसे लेके आए, उसका पालन पोषण किया, उसको ज्ञान वगैरह दिया, उसको बड़ी किया, और ये अत्यंत सुंदर थी मेनका की तरह ही। एक सुंदर स्त्रियों की ये एक आदमियों के लिए वीकनेस बन जाती है। शास्त्र में कई जगहों पे वर्णन है कि सुंदर स्त्री को देख के कामी पुरुष लोग जो है कई बार तो मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हा? या उनको हाई फीवर आ जाता है, हा? उनको बुखार आ जाता है अगर उस सुंदर स्त्री को देखा और उसकी प्राप्ति नहीं कर पाता है तो। यह अनुभव शायद सबको नहीं होगा, लेकिन कामी पुरुषों को होता होगा। जैसे वर्णन है कि कंस की माता जो थी पद्मावती, उसको कोई देख लेता तो स्वर्ग के देवता भी उसको देखकर मूर्छित होकर अपने विमान से नीचे गिर जाते, कितनी सुंदर थी वो। देवाहुति का भी वर्णन है शास्त्र में कि उसको देखकर स्वर्ग के देवता भी मूर्छित होकर गिरते थे। यहां पे ये जो दुष्यंत महाराज है, जब इन्होंने भी देखा इस शकुंतला को जो इतनी सुंदर थी, उसे देखकर उनके हृदय में तुरंत ही भोग की इच्छा हो गई कि ये मेरी पत्नी बने, अब देखिए एक तफावत है, आज का इंसान शायद ये सोचेगा कि मैं इसका भोग करूं, हा? लेकिन यहां पे दुष्यंत महाराज ये सोच रहे हैं कि मैं, मेरी ये पत्नी बने और मैं धर्म के हिसाब से इसका भोग करूं, अधर्म के हिसाब से नहीं, कि देखा के शुरू ऐसा नहीं, अधर्म नहीं, आप मेरी पत्नी बनो, मुझे पति के रूप में स्वीकार करो, फिर हम भोग विलास करें। यही बात यहां पे स्पष्ट हो रही है। हे अतीव सुंदरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो, क्योंकि मैं पुरुवंशी हूं, अतः एवं मेरा मन कभी भी अधार्मिक रीति से किसी वस्तु का भोग करने की चेष्टा नहीं करता। देखो उत्तर इधर ही है, भागवत में ही है। यहां पे ये स्वयं कह रहे हैं कि किसी भी अधार्मिक रीत से मैं किसी भी वस्तु का भोग करता नहीं हूं, तो कन्या का भोग तो कैसे करूं? मैं अगर तुम्हारा भोग करना चाहता हूं तो धार्मिक दृष्टि से ही, धर्म से ही करना चाहता हूं। अधर्म से अगर किसी कन्या का भोग करना है तो क्या रीति है? उसको गंधर्व विवाह की रीति से, हाँ, जो वेदोक्त है, जो शास्त्रोक्त है, उस रीति से उसके साथ विवाह संपन्न करें। अच्छा, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, विवाह संपन्न किया, उस बाद पुत्र प्राप्ति के लिए ही केवल उसके साथ संग करें। ये बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता है, इतना हाई स्टैंडर्ड ना कि पता नहीं इसका चर्चा विचारणा करके कोई लाभ होगा आज के समाज में कि नहीं, वो भी पता नहीं चलता। क्योंकि आजकल का श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में लोग जो विवाह करेंगे वो केवल इंद्रिय भोग की दृष्टि से ही देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ मैं विवाह करने जा रहा हूं वो मेरे इंद्रिय भोग के लिए लायक है या नहीं है, अन्यथा वो नहीं करेंगे। उसमें कोई गुण, उसका कोई कुल, सब नहीं देखने के चेष्टा नहीं करेंगे। धन है और इंद्रिय भोग की सामर्थ्यता शक्ति है तो विवाह करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर मान लो क्षत्रिय राजा किसी शूद्र कन्या को देखेंगे तो उसे नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे विवाह प्रस्ताव लेकर भी। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक नहीं है। या ब्राह्मण कन्या के पास भी जाएंगे तो भी वो नहीं जाएंगे, बोलेंगे तो उच्च कुल की है, विवाह प्रस्ताव भी मैं कैसे रखूं, क्योंकि ये वेदोक्त नहीं होगा। लेकिन यहां पे गंधर्व विवाह के अनुसार की रीति से यहां पे दुष्यंत महाराज जो है वो स्वयं ही प्रपोजल रख रहे हैं, क्योंकि राजा है, क्षत्रिय है, सतयुग के समय की ये घटना है। उस समय ये धरा के क्षत्रिय राजा किसी कन्या से, जो क्षत्रिय की बेटी है, अगर ब्राह्मण की बेटी होती है तो नहीं कर सकते, क्षत्रिय की बेटी है तो उसे प्रपोजल दे सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम क्षत्रिय की पुत्री हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ब्राह्मण कन्या हो। क्योंकि क्षत्रिय की कन्या, अगर क्षत्रिय कोई व्यक्ति है तो उसके लक्षण उसके शरीर से पता चल जाता है, और ब्राह्मण है तो उसके लक्षण भी उसके शरीर से पता चल जाता है। तो उसे कहा, मुझे लगता है कि तुम क्षत्रिय की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये प्रपोजल देता हूं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो उसके मन में शंका हो सकती है, हाँ, कि ये कैसे डायरेक्ट मुझे प्रपोज किए और मैं भी कैसे डायरेक्ट इनको चुन लूं, हाँ आप मेरे पति बनिए, हाँ मेरे पिता के पास जाना चाहिए, हालांकि इनको पता है कि मेरे पिता विश्वामित्र नहीं है तो कण्व ऋषि के पास जाना चाहिए, ये मेरे पास डायरेक्ट क्यों आ रहे हैं? तो उसका आगे उत्तर देते हुए आगे के दो श्लोक के बाद जिसको मैंने लिया, वहां वो कहते हैं कि क्षत्रिय राजा की बेटी होने के नाते तुम्हें ये अधिकार है कि तुम अपने पति को स्वयं चुनो। जैसे उदाहरण पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि सीता महारानी ने अपने पति रामचंद्र का स्वयंवर में स्वीकार किया, या द्रौपदी ने अर्जुन को स्वीकार किया। तो ये क्षत्रिय कुल की स्त्रियां जो रहती थी, राजकुमारियां, इन्हें ये अधिकार था कि अपने पति को वो स्वयं स्वयंवर में चुन ले, कौन से पति या कौन से प्रिंस राजकुमार के साथ उसे विवाह करना है। तो उन्होंने याद करवाया कि तुम क्योंकि क्षत्रिय की लड़की हो, तुम्हें ये अधिकार है, तुम चाहो तो मुझे चुन सकती हो और हम वेद रीति के अनुसार विवाह करेंगे और पुत्र प्राप्ति करेंगे। तो शकुंतला ने भी कहा कि तुम भी कुवंश के राजा हो, अत्यंत शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो, डायरेक्ट नहीं कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, इनडायरेक्ट कहती है कि तुम मेरा आतिथ्य और सेवा यहां पे स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि ये संस्कृति वाले शब्द है ना, ये कल्चर्ड लोग हैं, ये ऐसा नहीं कहेंगे हाँ चलो मैरिज करेंगे, चलो कोर्ट में जाएंगे, ऐसे सब रफ बात नहीं करेंगे, बोले हाँ तुम मेरी आतिथ्य मेरी सेवा तुम स्वीकार कर सकते हो। अब पहले की कन्या किसी अन्य पुरुष को कभी सेवा नहीं करेगी, पति की ही सेवा करेगी, या पिता की करेगी, या भाई की करेगी, या बेटे की करेगी, अन्य कोई पुरुष की सेवा की संभावना होती ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये महाराज समझ गए कि ये मुझे पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब आगे कहीं मानव समाज में जो कथा प्रचलित है कि उन दोनों ने विवाह किया, फिर उन्हें पुत्र हुआ, और फिर राजा कहता है कि मैं तो अब वापस मेरे राज में जाऊंगा, लेकिन भविष्य में तुम्हें लेने आऊंगा, या मेरा कोई मेरे संबंधी लोग आके तुम्हें मेरे यहां लेके आएंगे, और यादगिरी के रूप में अपने अंगूठी निकाल के उन्होंने शकुंतला को दी कि ये पहन के रखो, ये जो मुझे याद करवाएगा, भविष्य में अगर बहुत समय बीत गया और मैं भूल गया तो मुझे याद करवाएगा ये। और फिर मानव समाज ये कथा कहता है कि वो जब बहुत समय बीत गया, उसका बेटा बड़ा होने को आया, तब तक राजा आए नहीं, और जब राजा नहीं आए तो ये खुद जाती है अपने पिता, अपने जो कन्वर उसी पिता थे उसके परमित है, और वहां जाके याद दिलाती है कि मैं आपकी पत्नी हूं या आपका पुत्र है, तो वो मना कर देते, वो बोलते मुझे तो याद नहीं है। अब क्या है, क्षत्रिय राजा अनेक जगह में युद्ध करने जाते, कहीं कितने जगहों में कितनी पत्नियां रखते थे, हो सकता है कब कोई भूल जाए, हो सकता है ना, जैसे स्पिरिचुअल लीडर भी कभी कभी भूल जाते कि सामने वाला व्यक्ति मेरा शिष्य है कि नहीं है, दीक्षा तो दिया था उसको, फिर नहीं पता रहता है, भूल जाते हैं, ऐसा होता है। वैसे यहां पे ये भूल गए तो कहते नहीं अंगूठी देखो, लेकिन एक्चुअली अंगूठी भी नहीं थी उंगली में, वो गिर गई थी कहीं पानी में, किसी मछली ने खा लिया था, ये सब कथा है। अब मुझे इसका शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं मिला है कि ये कथा सही है या गलत है, कहीं पे ना महाभारत में कोई ऐसा प्रमाण मिल रहा है ना यहां मिल रहा है, तो उस कथा को हम नहीं स्वीकार कर सकते जब तक कोई प्रमाण शास्त्रोक्त या कोई आचार्य से न मिले। हो सकता है अगर कहीं प्रमाण रहेगा और मेरे ध्यान में नहीं है तो हो सकता है वो सत्य बात हो, लेकिन यहां पे जो शिला प्रभुपाद जी बताए हैं और जो बातों को यहां बताया गया उसे हम प्रमाण के रूप में ही स्वीकार करेंगे। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा शास्त्रों से ही प्रमाण ले। कभी कभी टीवी सीरियल में कुछ दिखाते हैं इस तरह से घटनाओं को, लेकिन वो प्रमाणिक है कि नहीं है वो पता नहीं है। ये जो कथा मैं मानव समाज की कही वो एक टीवी सीरियल है भी, ठीक वैसे ही पूरा शकुंतला और दुष्यंत का कथा बताते हैं, लेकिन पता नहीं है मुझे कि ये सही है कि नहीं, मुझे तो कहीं प्रमाण मिला नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसे प्रमाण है आगे इन्हीं इसी अध्याय के अन्य श्लोकों में कि वो शकुंतला जाती है अपने पुत्र भरत को लेकर महाराज दुष्यंत के राज दरबार में, और वहां उसे याद करवाती कि देखिए मैं आपकी पत्नी हूं, हमारा विवाह हुआ था गंधर्व विवाह, यानी हम दोनों की सम्मति से हुआ था और कोई वहां पे हाजिर नहीं था, तो आप मुझे स्वीकार करिए ये आपका पुत्र है। तो वो कहते कि नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है, क्योंकि ये सती स्त्री थी उसके लिए आकाशवाणी होती है, और आकाश से देवता लोग कहते कि नहीं नहीं ये बात सही है, आप ही की पत्नी है और ये आप ही का पुत्र है, इसे स्वीकार कीजिए। तो देवताओं की वाणी को स्वीकार करते हुए दुष्यंत महाराज जो है वो शकुंतला को और अपने पुत्र को स्वीकार करते हैं, और वही पुत्र आगे चल के भरत महाराज के रूप में प्रख्यात हुआ है और पूरे विश्व पे राज किया है। तो जब जब देखा जाता है कि कोई भी कार्य चाहे भोग विलास का हो भी, अगर मानव समाज है, मानव समय जब इस पृथ्वी पे हम जन्म लेते हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमने भक्ति पूर्ण नहीं की है इसीलिए हम यहां पे जन्म लिए हैं, तो स्वाभाविक है कि यहां की माया का प्रभाव तो हमारे मन पे पड़ेगा ही। और जब माया का प्रभाव भोग के रूप में जब हमारे ऊपर आता है, चाहे स्त्री का हो, चाहे भोग भोजन का हो, चाहे कार का हो, किसी भी ऐश्वर्य का हो, तो उसे प्राप्त करने के लिए यहां पे स्कंद में यह शास्त्र बार बार अनेक घटनाओं से सिखा रहा है कि धर्म के अनुसार करो। अगर धर्म से भोग करोगे तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आप भोग भी कर रहे हो और भक्ति में भी धीरे धीरे प्रगति होती रहेगी और एक दिन आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। भोग जो धर्म के अनुसार किया जाता है वो अंत वैराग्य देता है, लेकिन भोग जो अधर्म से किया जाता है वो अंत में भोगों की बढ़ोतरी करता है। इट्स लाइक फायर, इला प्रभुपाद कहते हैं इट्स लाइक फायर। हाँ, अग्नि में अगर केरोसिन और डालो तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, ठीक उसी तरह भोग की अग्नि में और भोग और डालो अधर्म से तो वो भोग की वृत्ति की बढ़ोतरी करता है। लेकिन वही भोग अगर धर्म से किया जाता है तो वो भोग का समन करते 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 एक दिन व्यक्ति को वैरागी बना देता है। ये सिद्धांत जो है वो भागवत से ही स्थापित होता है, अन्य जगह में ये स्थापित नहीं होता है, यहां तक कि अन्य कुछ वैदिक ग्रंथों में भी ये स्थापित नहीं होता है। इसीलिए कई कितने फिलोसोफर्स है इस समय समाज में, कुछ 200-400 साल की बात करें, वो लोग भी इस तथ्य, क्योंकि वो आचार्य से नहीं सीखे समझे, समझ नहीं पाए, तो इसी कथाओं को पढ़ते हुए जगत में वो लोग गलत प्रचार कर बैठे हैं। बोले देखिए भोग करने के बाद ही मनुष्य जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है। देखिए यहां पे इन्होंने भोग किया, उन्होंने किया, ये पूरे जो पिछले 4-5 अध्याय से जो घटनाएं चलती आ रही है, मैं कई बार यहां प्रवचन कर चुका हूं और आप जो लोग रेगुलर सुनते हैं अन्य प्रवचनकर्ताओं से, आप देखते हैं कि भोगों की घटना चल रही है। लेकिन फिर बाद में देखा जाता है कि ये लोग तो मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, कोई वैकुंठ जा रहा है, कोई गोलक वृंदावन जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने भोग धर्म की अनुसार किया। धर्म का जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करते हुए उसके साथ में किया, इसलिए इनका मुक्ति हुआ और जो लोग नहीं करते उनका भोग बढ़ते जाता और एंड में भोगी बनता है रोगी, रोगी बन के उसका अंत होता है और फिर पशु योनियों में जाके उसी भोगों को वो पूर्ण आगे इच्छा बढ़ाते रहता है। तो धर्म के अनुसार भोग करना अत्यंत आवश्यक है, यह सिद्धांत स्थापित होता है। कई बार घर की इच्छा होती है, ऐश्वर्य की इच्छा होती है, कार लेने की इच्छा होती है, लेकिन सेंटर में अगर धर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है मनुष्य समाज। जैसे एक बार की एक सत्य घटना है, वृंदावन धाम में हुई थी, एक व्यक्ति था, उसे उसका एक घर था छोटा सा, तो उसे बिजनेस करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उसने अपने घर को गिरवी रखे कि एक बनिए व्यक्ति से बहुत सारा कर्ज लिया, लोन। आजकल क्या बैंक होती है तो मोर्टगेज करके तुम कर्ज लेके आते हो, पढ़ते हो वगैरह, लेकिन पहले के समय में बैंक बोले तो बनिया रहता था और कुछ बनिए हमेशा बहुत चालाक रहते थे, वो रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके ज्यादा ही पैसा उनसे लूटते रहते ब्याज के रूप में। तो उन्हें भी एक ऐसा ही बनिया मिल गया जो ब्याज के रूप में उनसे बहुत पैसा ले लिया और सब पैसा चुकता होने के बाद भी अंत में उसने कह दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा पैसा बहुत बाकी है, जब तक पैसा नहीं दोगे तुम्हें घर नहीं मिलेगा। अब इस व्यक्ति की इच्छा एक्चुअली तो शुरुआत हुई थी कि कुछ बिजनेस करेगा, धन कमाएगा, कुछ भोग विलास करेगा, भोग की इच्छा से ये कार्य किया गया था, लेकिन परिणाम अभी क्या आ रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति ना उसको उसका धन चुकाने के बाद घर दे रहा है और उससे ब्याज वसूल कर रहा है, तो इसकी भोग की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। लेकिन एक तफावत था, इसकी भी भोग की इच्छा धर्म पे आधारित थी। इसने क्या इच्छा किया था कि मैं धन कमाऊंगा, जब बहुत पैसा मेरे पास आएगा तो मैं उस धन से वृंदावन जाऊंगा और हमेशा यात्रा करने में धन खर्च बहुत होता है तो मेरे लिए आसान होगा बार बार वृंदावन जाना और बार बार वृंदावन में जाके श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने मिलेगा। ये इच्छा के साथ वो बिजनेस करना चाहता था और अपना धन बढ़ाना चाहता था। आजकल हम धन बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी इच्छा सदैव वो नहीं हो सकती है सभी के लिए, कुछ लोगों की इच्छा रहेगी बंगला लेना है, कार लेना है, भोग करना है, ये करना है, नाना प्रकार की इच्छाएं रहेगी। अगर जिस व्यक्ति के लिए ये इच्छा है कि बहुत धन कमाना है, बहुत फिर वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, तो उसका वो भोग प्राप्त करने की या करने की इच्छा के सेंटर में धर्म है। हाँ, सेंटर में धर्म है तो चलेगा, उसका परिणाम आगे चल के मुक्ति में होएगा। जैसे ये कथा हम देख रहे हैं, आगे चल के इन लोगों की मुक्ति हो रही है, तो वो व्यक्ति बांके बिहारी जी के दर्शन की इच्छा कामना से कर रहा था, लेकिन फेल हो रहा था, उसके पास तो धन नहीं आया, आया वो सब चुकाने में गया, कुछ हो नहीं रहा है। तो उसने कुछ वकील को पकड़ के बताया, कोर्ट में केस किया कि भाई ये देखो मेरा घर नहीं दे रहा है, मेरा धन नहीं दे रहा है, तो मुझे तो परेशानी हो गई। तो कोर्ट में भी जज रहे थे, वो लोग भी तो प्रमाण पूछते, बोले तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुमने इसको धन वापस किया? तो प्रमाण बोलो, मैंने धन दिया, उसने मुझे कोई ऐसा रिसिप्ट वगैरह कभी दिया नहीं है। लेकिन हालांकि बनिए लोग अपना पूरा एक रिकॉर्ड रखते हैं, लिखते रहते हैं, पूरा हिसाब किताब रहता है उनकी किताबों में, लेकिन इसकी गलती कि इसने कभी हिसाब किताब में रिसिप्ट लिया नहीं था, उसके पास था रिकॉर्ड में। लेकिन अब वो जब गलत करना चाहता है तो अपना रिकॉर्ड क्यों खोलेगा, उसको उसने छुपा दिया कहीं पे, ताकि कोई पुलिस इंक्वायरी हो, पुलिस अगर आ जाए घर सर्च करें वगैरह, तो भी उनको किसी को रिकॉर्ड मिले ही नहीं, ऐसी जगह में छुपा दिया, वो रिकॉर्ड मिलेगा नहीं। अब ये बेचारा परेशान, तो इसने सोचा देखो भाई, मैं तो धर्म के अनुसार ही कुछ धन प्राप्त करना चाहता था, अब कैसे भी करके मैं चलते चलते बांके बिहारी मंदिर जाता हूं, वहीं पे भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान ये मेरी परिस्थिति हुई है, आप मुझे सहायता कीजिए। तो वो गया, चलते 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 कितने दिन बीत गए, वो आसान नहीं है चल के बांके बिहारी जाना, बोले तो चलते 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 कई कितने दिनों के बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचा शाम के समय, और भगवान के सामने प्रार्थना किया भगवान से, बांके बिहारी से, जिसे कि मैं तो आपका आपके दर्शन के आने की इच्छा से धन कमाना चाहता था, लेकिन अब ये बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने हुई, धन तो कमाया नहीं, घर भी चला गया, अब तो मैं कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, आप ही मुझे सहायता कीजिए। देखिए, भोग की इच्छा धर्म संबंधित थी, अब भी धर्म है। वो इतना प्रार्थना करके मंदिर के बाहर आया, और बांके बिहारी मंदिर के बाहर ही, क्योंकि उसके पास नहीं था होटल कुछ बुकिंग करने के लिए, वहीं पे सो गया। रात को करीबन 12:30-1 बजे जब सब मंदिर बंद हो जाते हैं, सब लोग सोए रहते हैं, तब बांके बिहारी स्वयं उसके स्वप्न में आके बताएं कि तुम चिंता मत करो, कोर्ट केस लड़ने वापस चले जाओ, और वहां जाके कहना कि नहीं प्रमाण है इसके पास। तो उसने पूछा कि मेरे मुझे लेकिन मालूम नहीं वो प्रमाण उसने कहां रखे हैं। बोले उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा, जाके तुम जज को इतना ही कहो प्रमाण है उसके पास कि मैंने धन दिया है। अगर जज पूछेंगे कि क्या प्रमाण है, तो बोले एक व्यक्ति है, बांके बिहारी जी स्वयं प्रमाण है। बोले बांके बिहारी प्रमाण है, वो कैसे मानेंगे, वो भगवान को ऐसे थोड़ी मान लेंगे। बोले तुम जाओ चिंता मत करो। तो वो भी सोचा ठीक है, भगवान कहते हैं तो मानेंगे। वो गया अपने गांव वापस, गांव जाके जिस दिन कोर्ट केस था उस दिन गया, और मंदिर में अरे कोर्ट में जाके उसने बताया कि है एक व्यक्ति प्रमाण, हाँ, जिसे पता है कि मैंने इसको धन दिया है। तो जज ने पूछा कौन है, बोले बांके बिहारी है। तो जज को लगा किसी व्यक्ति का नाम है बांके बिहारी, होता है ना, हाँ, इस संसार में व्यक्तियों का नाम होता है ना, बांके बिहारी, मदन मोहन, ऐसे सब व्यक्ति का। तो जज के जो सिपाही जो रहते हैं ना, वो जोर से चिल्लाया बांके बिहारी हाजिर हो करके। अब वो सोचने लगा कि अब क्या होगा, बांके बिहारी तो हाजिर हो मतलब कहां से कौन आएगा। लेकिन उतने में सत्य घटना हुई, एक व्यक्ति कंबल लपेटे हुए, थोड़ा सा मुखचंद्र ही केवल दिख रहा था, बाकी पूरे शरीर पे कंबल लटका था, ये लगा के रखा था, वो व्यक्ति प्रवेश करता है। सब लोग यही सोचे कि बांके बिहारी नाम का ये व्यक्ति है जो आ रहा है, लेकिन इसको आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं, ये कौन आ रहा है। और वो व्यक्ति आके कठेरे में खड़े रह गया। और जज ने पूछा भाई तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, बोले हाँ है। क्या प्रमाण है, मैंने स्वयं देखा है, इसने इसको पैसा चुकाया है पूरा। बोले तुम्हारे देखने बोलने से नहीं चलेगा, प्रमाण चाहिए। बोले इसकी किताबों में प्रमाण लिखा है। तो बोले कहाँ है बताओ, कोई रिसिप्ट है? बोले रिसिप्ट क्या, उसकी खुद के हस्ताक्षर में किताबों में लिखा हुआ है। बोले कहाँ है बताओ। और सामने वाला व्यक्ति भी बोल रहा है नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, कहाँ है बताओ। तो बोले उसके घर के आंगन के पीछे के खेत में जाइए, अभी का अभी इसको इधर ही रखिए, दो पुलिस को लेके जाइए और उधर खुदाई कराइए, पता चलेगा आपको। और वहां पे एक बक्सा मिलेगा, बक्से को खोल के नी पांचवी फाइल निकाल लेके आइए। तो बोले ठीक है। तो पुलिस गए, खुदाई किया तो सचमुच बक्सा निकला, बक्सा निकला तो फाइल निकली, फाइल निकाला, बोले ये नंबर का पन्ना खोलिए। वहां पे सारा रिकॉर्ड उसी के हाथों से लिखा हुआ था कि इस आदमी से कब कब कितना पैसा उसको रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि ये लोग जैसे बैंक रिकॉर्ड तो रखती है, अगर हमारा रिकॉर्ड गुम गया तो भी बैंक के पास रिकॉर्ड रहता है कि कब कब क्या हो रहा है। अगर वो बैंक छुपाना चाहे तो छुप गया, ना छुपाना चाहे तो उनके पास रिकॉर्ड है। वैसे इस व्यक्ति के पास रिकॉर्ड रहता है कि इसने पैसा दिया, इसको लिया वगैरह, लेकिन वो छुपाना चाहता था। लेकिन स्वयं बांके बिहारी ने वो प्रस्तुत किया और कोर्ट में वो केस जीत गया, उसको घर मिल गया, सब कुछ हो गया। बाद में वो जब जज ने कहा कि ठीक है ये आप जा सकते हैं, तब जज भी सोचने लगा कि ये व्यक्ति कौन है, अपने गांव में इस तरह का कोई व्यक्ति, उसका मुख देखा तो जज भी आश्चर्यचकित हो गए। जज और उस व्यक्ति, ये दो व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं देख सका बांके बिहारी जी का मुखचंद्र को। और जज उसी क्षण डिसाइड कर लिया कि ये जरूर बांके बिहारी स्वयं भगवान है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने कहा यहां पे रिकॉर्ड है, उसी दिन में जज ने अपना नौकरी छोड़ दिया, वृंदावन चले गया, बांके बिहारी में पूरा जीवन बिताया और जज बाबा के रूप में एक प्रख्यात भक्त वृंदावन में हुए हैं। और वो व्यक्ति जिसका घर था, वो भी व्यक्ति ने फिर घर बार सब त्याग कर दिया और उसी दिन वो चला गया और वो भी वृंदावन में पूरा जीवन समर्पित किया। उसकी बेटी जिसको ये कथा पता है पूरी, लेकिन वो स्वयं उसने ये सब दर्शन नहीं किया था, आज भी वो वृंदावन में वृंदावन परिक्रमा मां में जल सेवा करती है। जो लोग परिक्रमा करते हैं उसे जल देती हैं। और वो खुद स्वयं आज भी कहती है कि मैं इसी आशा से यहां ठहरी हूं और जल सेवा कर रही हूं कि भविष्य में मुझे भी कभी ना कभी यहां पे बांके बिहारी जी का दर्शन होगा। तो बस इन्हीं सिद्धांतों पे आधारित ये कथा थी, ये समझाने के लिए कि भोग की इच्छा से किया गया कार्य अगर धर्म के सिद्धांत के आधारित किया जाएगा तो वो भविष्य में आगे चल के हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न करेगा और हमें भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन वही भोग की इच्छा का कार्य अगर अधर्म के मार्ग से शुरू किया और उसी तरह से चला तो वो भोग वैराग्य तो कभी उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन और भोगों की बढ़ोतरी करेगा। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हाँ, और का अंत मनुष्य योनि से लेके सीधे पशु की योनि में जीव को फेंकता है, उसकी मुक्ति का कोई सवाल नहीं होता है। ऐसी सत्य घटनाएं ये जैसे श्रीमद् भागवतम के पिछले 5 अध्यायों से चलती आ रही है, एक के बाद एक। ऐसे कुछ अभी के युगों में भी लोगों के साथ मिलती है। इसलिए ये संदेश है भागवत से कि भोग करो, जैसे भोजन का भोग की इच्छा होती है प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, कोई बात नहीं, जितना चाहिए प्रसाद खाओ, है ना, प्रसाद की कोई कमी नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है। हाँ, स्त्री का भोग करने की इच्छा है विवाह करिए प्रामाणिकता से, वैदिक विधि के अनुसार पुत्र प्राप्ति कीजिए, जितने पुत्र का सामर्थ्य है प्राप्त करिए और जीवन बिताइए, जरूर आगे चल के भगवान मुक्ति का मार्ग दिखाए और वैराग्य भी उत्पन्न होगा। कितनी बार होता है, मैं कई भक्तों से कई लोगों से सुन चुका हूं कि अब हम परेशान हो गए, अब हम कंटाल चुके ये संसार से, ये भोगों से, ये वृत्ति से, अब हमें मन होता है कि हम भगवान के धाम जाएं, भक्ति करें, कीर्तन करें, क्योंकि जो भोग किया गया इस जीवन में वो धर्म के सिद्धांतों पे किया गया है तो ये परिणाम लाता है। अन्यथा आप बाहर लोगों में ये नहीं सुनेंगे कभी, जो लोग भोग विलासों में रहते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर लोग करोड़ों करोड़ों रुपए का भोग विलास करते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों जमा होने के बाद भी कभी नहीं कहते कि हमको अब ये सब छोड़ के वृंदावन जाना है, जबकि उनके लिए संभव होता है। जाना हमारे लिए शायद संभव नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए संभव होता है सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाना, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपया जमा होता है। बात भी भोगों में बतरी होती है, बोलते मेरे को यार चीफ मिनिस्टर ही क्यों रखा है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना रहे, भोग में बढ़ोतरी हुई। ये नहीं कहता है कि आप चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ के राजा, जैसे ये लोग कहते हैं ना, हाँ ये पुरु राजा, ये दुष्यंत राजा, ये कैसे कहते हैं अब मेरा भोग पूरा हो गया, राजपाट तुम ले लो, मैं जाता हूं जंगल में तप जप करूंगा। वो लोग क्या कहते हैं, मरेंगे लेकिन हम चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन के ही मरना चाहते हैं। ये तफावत होता है भोग धर्म के सिद्धांत पे और भोग अधर्म के सिद्धांत पे किए गए मार्गों का। उसका मेजर जो रोल है, अब उसको भी थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए कि ये वृत्ति कब आएगी। ये वृत्ति अहंकार से आती है। कौन सी वृत्ति? भोग अधर्म के मार्ग से करने की वृत्ति अहंकार से आती है। अहंकारी व्यक्ति यही सोचता है कि ये सब कुछ जो है भोग विलास का सामग्री, ये सब मेरा है, मेरे लिए है। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है कि ये मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है, इसलिए मुझे अगर प्राप्त करना है तो भगवान से ही मुझे प्राप्त करना है, भगवान को जोड़ के, भगवान को केंद्र में रख के मुझे ये सब प्राप्त करना है। एक भक्त को भी कार चाहिए, लेकिन उसे मंदिर आने के लिए कार चाहिए, उसे सत्संग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए कार चाहिए, है ना, उसे धाम में जाने के लिए धन चाहिए। वो प्लेन में भी जाएगा तो वो धन कमाएगा, प्लेन में मायापुर जाता है, वो सब वैलिड है, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों की इच्छा ऐसे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार उन्हें ये बात स्वीकार नहीं करने देता कि सब कुछ जो इधर भोग विलास की वस्तु है वो भगवान का है, हमारा नहीं है। और एक भक्त ये ज्ञान से, भक्तों के संग से, आचार्यों से पता चलता है कि ये जो कुछ भी इधर है वो भगवान का है, अगर मुझे भोग करना है तो भगवान से मुझे लेना पड़ेगा, मांग कर, याचना कर कर, प्रार्थना कर कर, है ना, भगवान से प्राप्ति करनी होगी, भगवान को केंद्र में रखना होगा। हम लोग भी पिज्जा खाना चाहते हैं, लेकिन हम मैकडोनल्ड में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मायापुर राधा माधव का सुबह का महाप्रसाद पिज्जा खाएंगे। तफावत है, दोनों का तफावत है, दोनों पिज्जा खाना चाहते हैं, दोनों की चेतना में बहुत अंतर है। हा? मैं बहुत बार बॉलीवुड स्टाइल में कहता हूं कि ओ लाला तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त है जो ओ लाला लाला करके भगवान को पुकार रहा है, और एक अभक्त है ओ लाला करके माया को पुकार रहा है। दोनों की चेतना में अंतर है। हा? लाला तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी लाला को बुला रहा है वो तो उसकी चेतना पे ही डिपेंड करता है। लोग फोन कॉल करके मैकडोनल्ड को कहते कि पिज्जा घर पे दे दो, पिज्जा खाते भोग कर रहे हैं। और भक्त के मुख से जब भी पिज्जा की बात सुनी है ना, तो वो यही कहते हैं कि कब मैं मायापुर जाऊं और कब मैं वहां का राधा माधव का सुबह का महाप्रसाद पिज्जा खाऊं, वहां का पास्ता खाऊं। कुछ मैंने सुना, एक भक्त मुझे कह रहे थे, एक महाराज कह रहे थे कि क्या पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, लेकिन वो मैकडोनल्ड वाले के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। क्योंकि यही पिज्जा पास्ता राधा माधव का अगर मायापुर में सुबह मंदिर में खा लिया तो वो वैकुंठ का रास्ता बन सकता है। तो सेंटर में जो वृत्ति है ना, दैट डिसाइड्स योर डेस्टिनेशन, कि क्या वृत्ति से भोग विलास करना चाहते हैं। अहंकार की बात से मुझे एक अभी अभी की, हम लोग जब भी उदाहरण लेते हैं तो शायद शास्त्रों से लेते हैं या कुछ 100-50 साल की घटनाओं से लेते हैं। कभी कभी हमें होता है कि ऐसा कोई ज्वलंत उदाहरण आज के समाज में होते हैं जिनको अहंकार नहीं है, या हम उनसे कुछ सीखें। ये पिछला जो कार्तिक महीना गया, थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने एक ज्वलंत उदाहरण दिखा कि एक बालक कैसे बिना अहंकार का रहता है। अभी कार्तिक का जो समय था, अभी एक महीने पहले, अपने ही मंदिर की सत्य घटना है, जो दामोदर का लैंप करने के बाद मैं यहां से बाहर गया और वहां जो मंदिर की सीढ़ियां हैं वहां बैठे बैठे मैंने पूरा देखा उसको। वो लैंप के जो स्टॉल लगते थे वहां पे लोग आते हैं, लैंप लेते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि गोपाल गार्डन के कई विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो थे, प्रभु जी और छोटे छोटे बच्चे कन्याएं, वो लोग सेवा करती थी लैंप देने का। हाँ, कुछ भक्तों की लड़कियां थी, कुछ लड़के थे, गोपाल गार्डन स्कूल के विद्यार्थी लोग थे जो ये लैंप देने की सेवा करते थे। एक दिन मैंने देखा, जो हमेशा रोज देखता था, कि एक पर्टिकुलर भक्त जो बरसों पुराना भक्त है, मैं राधा रस बिहारी में बरसों पहले ज्वाइंट हुआ तभी भी वो सीनियर थे, मैं जब एकदम नया था, मैं बात कर रहा हूं शायद 1988 की, उस समय भी वो सीनियर थे। उसी भक्त का इधर आना हुआ था और इधर थे उस महीने के दरमियान। तो वो भक्त आते थे और तीन चार बत्ती उठाते थे, तीन चार लैंप ले लेते थे और करते थे, हो सकता है जो भी कारण हो। और यहां पे स्टॉल पे विष्णु प्रभु ने सिखाया था उन बच्चों को कि आपको किसी को तीन चार बत्तियां नहीं देना है, एक ही बत्ती देना है सबको, क्योंकि अगर तीन चार सब लोके जाएंगे तीन चार दिन चार, तो फिर आगे सबको मिलेगी नहीं, है ना। ये विष्णु प्रभु ने सिखाया था, तो ये लोग बस विष्णु प्रभु ने सिखाया हमको ये करना है, और उनको ये पता नहीं है कि कौन सीनियर कौन जूनियर, बच्चे हैं ना, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है किसी को, बस सेवा का भाव है, गोपाल गार्डन स्कूल में सीखे हैं, सेवा करना चाहिए, आए हैं। कार्तिक का था उनका एग्जाम, स्कूल का टाइम 11 बजे का था, तो सुबह समय मिल जाता, आते थे सेवा करते थे। तो उसमें मैंने एक भक्तिन को देखा जिसका नाम है चंद्रिका, छोटी लड़की है, 5th या 6th स्टैंडर्ड की रहेगी, वो उस दिन खड़ी थी उधर, और उसको मैं रोज देखता था, वो सेवा करती थी, वो मस्त सेवा करती थी, उसके चेहरे पे हमेशा हास्य रहता था, एकदम भक्त के लक्षण जो एकदम चेहरा जो प्रफुल्लित होता है ना, उसका वो ज्वलंत उदाहरण थी वो लड़की। वो सेवा कर रही थी तो उस वो सीनियर टी 5-6 लैंप उठा लिया, बाकी के लोग आके एक एक ले रहे थे उनसे, लेकिन उसने खुद 5-6 उठा लिया। तो वो बोली कि नहीं, आप एक ही ले सकते हैं, हमारे विष्णु प्रभु ने कहा एक ही लेना है, 5-6 आपको नहीं मिलेगा। इतना उसने बताया, अब एक्चुअली शुरू हुआ खेल, मैं देख रहा हूं साइड से सब कुछ, क्योंकि मैं दोनों को पहचानता हूं, वो लड़की को भी जो हमारे परम मित्र है माधव प्रभु उसकी बेटी है, और उस माता जी को भी बरसों से है, राधा रास बिहारी में हम लोग थे कलिक से एक जमाने में साथ में थे। तो वो चिल्लाई उस पर, गुस्सा किया, क्रोध किया, कैसे मैं क्यों नहीं ले सकती 4-5, बहुत बुरी भली बातें की, तुमको सेवा करने आता है कि नहीं, क्या हो तुम, कैसी हो, ये सब बहुत चिल्लाई उसको, पता नहीं है तुमको क्या कैसे करना चाहिए, मैं तो 4-5 लूंगी करके, किसने बोला तुमको मैं 4-5 लेती हूं, मैं तो कभी 4-5 लेती हूं नहीं, आज पहली बार ले रही हूं। तो बोले नहीं माता जी, आप तो रोज 4-5 लेती है। तो बोले नहीं, आज पहली बार लिया है मैंने, झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती तुम्हें, झूठ बोल रही है। ये पूरा जो वार्तालाप 2-3 मिनट का चला ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा था दूर से कि ये छोटी लड़की के मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसके चेहरे का रूप देख के उसके मन में क्या चल रहा है वो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, स्वाभाविक है ना, क्योंकि चेहरा क्या है, मन का जेरोक्स है ना, जो मन में है ना वो चेहरे पे दिख ही जाता है, वो पूरा जेरोक्स है। तो मैं उस चंद्रिका को देख रहा था दूर से बैठे बैठे, उसको नहीं पता कि मैं ये वार्तालाप सुन रहा हूं, देख रहा हूं। वो कन्या, वो चंद्रिका एकदम हंस रही थी, ये जोर जोर से डांट रही है उसको, झूठी बता रही है, हाँ, उसको इतना परेशान कर। अगर उस जगह पे मैं होता ना, मैं भी सामने कुछ उसको बोल देता था और वो सेवा छोड़ के निकल जाता था, अहंकार बीच में आ ही जाता था, ये मुझे झूठा कहती जबकि ये खुद झूठी है, और मुझे ये कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो ये वगैरह, मैं बोल देता अरे तुम झूठ बोल रही हो, मैं रोज देखता हूं करके, और मैं नाराज होके चले आता था, दुखी होके मेरे चेहरे पे प्रकट होता था। लेकिन वो लड़की इतना हंस रही थी, कुछ बोली ही नहीं, हंसती है हंसती है, वो झूठा बोलते जा रही है, गाली गलौज कर रही है और ये हंसती जा रही है। और वो जब माता जी गुस्सा करते करते आगे चली गई ना, तो हंसते हुए अपनी जो दूसरी 4-5 साल की कक्षा की लड़की जो साथ में सेवा कर रही थी उसके हुए टर्न करके वो पहली बार कुछ बोली, जब अब तक रिप्लाई नहीं दे रही थी ना, वो उसको बोली, अरे मुझे ये नहीं समझा कि झूठ वो बोल रही थी कि मैं बोल रही थी। वो लड़की इसको पूछती है, वो माता जी को कुछ नहीं बोली, बोले अरे ये झूठ बोल रही थी, मैं झूठ बोल रही थी, मेरे को समझा ही नहीं। तो वो लड़की छोटी वाली बोलती कि झूठ तो वो बोल रही है, रोज लेके जाती है। फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोली, उसने उसकी सेवा चालू रखी, और कई दिनों तक वो लड़की आई और सेवा कर रही थी, हंसती थी और हंसी खुशी सेवा कर रही थी। थोड़े दिन के बाद मैंने उसके पिताजी को पूछा कि चंद्रिका ने कुछ आपको बताया, आपके साथ इसके साथ ऐसी एक घटना घटित हुई? तो उसके पिताजी ने बताया, नहीं तो ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया। तब मुझे एक डबल श्योर हुआ, कंफर्म हुआ कि लड़की देखो कितनी अच्छी, अहंकार रहित है, हा? उसने अपने पिता माता से भी कंप्लेन नहीं किया कि उस तरह से उसने मुझे डांटा, कुछ नहीं बताया, हंसते हुए उसने उसको स्वाभाविक ही उसको स्वीकार कर लिया, सहन कर लिया, सेवा चालू रखी, कोई कंप्लेन नहीं किया। तब मैंने उसके पिताजी को ये बताया पूरा वार्तालाप और कैसे कैसे हुआ। तो उसके पिताजी ने बताया कि उसका अच्छा स्वभाव है, इसी तरह से अगर हमारे परिवार में भी कहीं पे किसी का झगड़ा हुआ ना, तो ये जाके ये छोटी है ना, फिर भी बड़े लोगों को समझाने का कोशिश करके उनको अलग करती है। तो ये स्वभाव जो है और ये जो बातें हैं, ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के हृदय में अहंकार नाम की चीज नहीं है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी की डांट सहन करके भी सेवा करें, ये मैंने बड़ों बड़ों में भी नहीं देखा है, मैं खुद भी नहीं कर सकता हूं। मैंने कई बार इस्कॉन की कहीं कितनी सेवाएं ऐसे ही कारणों से छोड़ दी है, नहीं करूंगा, ठीक है जाओ, तुम लोग डांट रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं करना है मुझे, तुम ही करो। मैं जब 1989 में राधा रावरी जन्माष्टमी फेस्टिवल में खड़ा था प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में, तब निताई प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि एक भक्त को एक ही रसगुल्ला देंगे, एक से ज्यादा किसी को भी नहीं देंगे। कोई भी आया ज्यादा मांगा, मुझे आके बोलने का नहीं देने का। मैं बोला ठीक है। तब मैं एकदम ही नियोफाइट नया था मंदिर के लिए, शायद 6 महीना से 1 साल ही हुआ था, और वक्रेश्वर पंडित ने वो सारी स्टॉल की सेवा ली थी, तो उन्होंने मुझे रखा था, और निताई प्रभु हमारे इंचार्ज थे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के। तो वहां पे भी ऐसी मेरे साथ सेम घटना घटित हुई थी उन दिनों में, जबकि वो उस समय मेरा एज था 25 ईयर्स के आसपास था। तो वो एक सीनियर डिवोटी माता जी आई और बोली मेरे को 10-12 रसगुल्ला दो। मैंने कहा नहीं दे सकता, बोला नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोला निताई प्रभु का आदेश है। बोले कौन होता है वो, उससे सीनियर तो मैं हूं। बोला वो मुझे नहीं मालूम, सीनियर जूनियर, निताई प्रभु का आदेश है, ज्यादा चाहिए उनसे ले लो, क्योंकि उनके अंडर में मैं इधर बैठा हूं, तो मेरे लिए तो वही मैनेजर है। तो उसको स्वीकार नहीं था कि वो निताई प्रभु जो उसके पद में छोटे उसके लिए होंगे शायद, कि मैं उसके पास जाऊं और वही करूं। उसने जबरदस्ती उठा लिया रसगुल्ला। तो मैं बोला मैं निताई प्रभु को जाके कहूंगा, तो वो उसके पतिदेव को बुला के लाई, बोले ये देखो ये लड़का कैसा बदमाश है, ये सब बोलने लगे उसको, मेरे को नहीं दे रहा है रसगुल्ला, ये वो वगैरह। तो उसका पतिदेव भी सीनियर था उधर का, उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोले तुम सेवा नहीं करोगे। जैसे ही चिल्लाया मैं बोला बाहर में गई तुम्हारी सेवा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाता हूं घर के, मैं छोड़ के घर चला गया था। तो उस बात का और इस बात का मैं जब ये विश्लेषण करता, मैं सोचा कि कितना अहंकार से भरा था मैं, कि एक व्यक्ति के इस वर्ताव से मैंने सेवा छोड़ दी थी, जबकि ये छोटी लड़की ने वैसा ही सिमिलर वर्ताव ऐसे ही व्यक्ति से हुई है। दो व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन वो अलग थी, ये अलग माता जी थी, दोनों माता जी थी, ये एक प्रॉब्लम था। तो मैंने सेवा छोड़ दी थी, वो अहंकार का प्रतीक था एक्चुअली, इट वॉज अ फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो वो रिप्रेजेंट करता है, ए, मेरे साथ ऐसा करो मैं सेवा नहीं करूंगा, जाओ मेरे साथ वो लोगों ने ऐसा किया मैं अब जब छोड़ दूंगा, ये फॉल्स ईगो है एक्चुअली। हाँ मेरे साथ ऐसा किया मंदिर नहीं जाऊंगा मैं, ये फॉल्स ईगो है हमारा। अगर इस फॉल्स ईगो के साथ हम ये सोचेंगे कि मैं संसार का भोग करूं धर्म के अनुसार, वो अपने आप को हम चीट कर रहे हैं। धर्म के अनुसार कभी भी हम भोग नहीं करेंगे, कभी भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, और फिर भी हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। भोग पहली बात तो नहीं करे तो श्रेष्ठ, और करना है तो भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो वो मुक्ति का मार्ग खोलेगा, अन्यथा रोग का मार्ग खोल के पशु योनि चोरा पिलाक योनि खोल के रख देगा। ये आज के इस श्लोक से और इस अध्याय से सीखना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। कोई प्रश्न है? 10 मिनट बाकी है, अगर प्रश्न रहेगा तो। द्रौपदी का
जो था कि ये मिले और इनको पसंद आ गया, तो इसमें
नहीं, गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि पत्नी, यानी इनका प्रश्न है कि यहाँ पे शकुंतला जो है वो अपनी इच्छा से ही पति को स्वीकार कर लिया है ना दुष्यंत महाराज को, और जो उदाहरण प्रभुपाद दे रहे द्रौपदी का और सीता महारानी का, तो ये लोगों ने माता पिता के समक्ष में स्वयंवर हुआ और एक शर्त रखी गई थी कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही अपने पति को चुनो, जो ये करेगा उसको ये मिलेगा। लेकिन वो शर्त जो है वो स्त्री की थी, शर्त माता पिता की नहीं थी। तो वो स्त्री ने शर्त भले रखा लेकिन चॉइस उसकी थी कि वो किसको चुनेगी। मान लो कोई समझो कंस है, अगर कंस आके समझो ये लक्ष्य को प्राप्त करे तो लड़की मना कर सकती थी। जैसे अर्जुन के बदले अगर दुर्योधन तोड़ता था वो लक्ष्य को भेद करता था, तो द्रौपदी के हाथ में वो था अधिकार कि वो दुर्योधन को मना भी कर सकती थी कि नहीं, तुम इस लक्ष्य प्राप्त किए फिर भी मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। जैसे कर्ण के साथ हुआ, कर्ण को मना कर दिया उसने कि नहीं तुम कर सकते हो मुझे पता है लेकिन नहीं। तो वो इच्छा की बात हो रही है। माता पिता कह सकते थे अरे तुमने ये शर्त रखी थी अब कर्ण ने किया उसको क्यों पति के रूप में स्वीकार नहीं कर रही हो। ठीक है लेकिन मना तो किया ना, मना तो किया ना, यानी इच्छा किसकी थी मना करने की? द्रौपदी ने ही मना किया और किसी ने मना नहीं किया, यहां तक कि उसके पिता ने भी मना नहीं किया। मना करने की जो स्वतंत्रता है या स्वीकार करने की जो स्वतंत्रता है वो राजकुमारी की थी, उसका मैं बात कर रहा हूं। वो स्वतंत्रता राजकुमारी को मिलती है गंधर्व विवाह करने की, वो शास्त्र उसे उन दिनों में क्षत्रिय कन्याओं को अधिकार देता था, उसका चर्चा चल रहा है। जबकि उदाहरण की बात हुई है तो वो भी उनकी स्वतंत्रता से ही वो कर रही है। अगर द्रौपदी मना कर देती इन ब्राह्मणों को भी स्वीकार करने के लिए, अर्जुन वगैरह उस समय ब्राह्मण रूप में थे तो वो करते थे। ये बात सही है कि वहां पे माता पिता हाजिर थे, यहां पे इसके माता पिता हाजिर ही नहीं थे क्योंकि माता चली गई थी स्वर्ग में वापस और पिता तप करने इसको छोड़ के जंगल में चले गए थे। यहां तक कि ये शकुंतला कहती है तो इसी दुष्यंत महाराज को कि मेरे माता पिता मैं नहीं जानती हूं कौन है कैसे है कहां है क्या है, लेकिन मैंने मुनि मेरे जो मुनि है उन्हें मैंने सुना है परम मुनि से कि ये इनके मेरे माता ये थी मेरे पिता ये थे और मेरा जन्म इस तरह से हुआ, मैं यहाँ की सत्रियाणी हूं करके। मुझे नहीं पता, ये केवल मैंने मुनि से सुना हुआ बात है। तो जब उसको पता ही नहीं है कौन है कहाँ है कैसे, तो कोई अप्रोच करने का सवाल नहीं आएगा ना। तो क्षत्रिय कन्या थी वो खुद ही स्वयंवर से तय कर सकती है, स्वयंवर से करे चाहे किसी को भी कहे, लेकिन संस्कार देखना है हमें एक्चुअली इन सब कथाओं में। देखिए कार्य वही लेकिन संस्कार देखना है, चेतना देखनी कि कैसे संस्कार से कैसे चेतना से यही पाणी ग्रहण हो रहा है। आज की लड़कियों की तरह नहीं माता पिता ने मना किया भाग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, भागेगी नहीं। अगर माता पिता मना कर देंगे तो नहीं भागेगी, लेकिन क्षत्रियाणी है तो उसका अधिकार है, ब्राह्मण न्या रहेगी तो उसका अधिकार होता है, शूद्राणी को अधिकार नहीं होता है वो। तो वो संस्कार और चेतना हम लोग सीख रहे हैं इन सब कथाओं से। और कोई प्रश्न? जोर से बोलिए। क्या तो प्रश्न क्या है? ये पाप है क्या? ये प्रश्न है कलयुग की या सत्ययुग की? अभी का, अभी के समय का। कलो शूद्र संभव, सब शूद्र है, सब शूद्र ही जन्म लेते हैं, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है कोई क्षत्रिय नहीं है, इसीलिए हम ये सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते, हमें अधिकार नहीं है इन नियमों को देखने और पालन करना या कुछ करने की। अब आपका प्रश्न है कि कोई लड़की जा रही है तो सुंदर है तो देखने का मन होता है, देखते हैं, एक बार देखा दो बार देखा ठीक है, तीसरी बार देखा तब एक्चुअली प्रभुपाद और आचार्य कहते ध्यायतो विषयान पुंसा संगत तेसु उपजायते, संगात संजय थे कामा, कामा क्रोध अभिजाय थे, ये नरक का रास्ता है आगे चल के। अपने आप को अगर उसी स्तर पे रोक दिए, देखना बंद करके अपने मार्ग पे चले गए और भक्ति भजन करने लगे और उससे अपने मन को डाइवर्ट कर दिया, तब तक तो वो पाप नहीं है। दो बार तीन बार देख लिया ना, हो गया ना, बात खत्म, तब तक वो पाप नहीं है। लेकिन अगर वो देखे रहे तो संगात संजय से काम, हृदय में एक काम पैदा होगा, एक भोग की प्रबल इच्छा प्रकट होगी कि मुझे ये पत्नी रूप में चाहिए। हाँ, तो फिर माता पिता को बात करना चाहिए, अपने माता पिता से, और अपने माता पिता उस लड़की के माता पिता से बात करें। और अगर सबको मंजूर है, यहाँ पे क्षत्रिय विवाह नहीं चलेगा, गंधर्व विवाह, बिकॉज वी आर नॉट क्षत्रिय, है ना, यहाँ गंधर्व विवाह नहीं चल सकता है। वहां माता पिता अगर बात करें और तय हो जाए और सामाजिक दृष्टि से एक वैदिक संस्कार करके विवाह करें तो गलत नहीं है, तो पाप नहीं होगा। पुत्र प्राप्ति कीजिए, परिवार गृहस्थी जीवन जिए, भक्ति करते रहिए, धाम यात्रा करते रहिए, भजन करते रहिए, खुशी और संतुष्टि हो रही है कि एक सुंदर पत्नी मिली, चलते रहिए, कोई बात नहीं। देखना पाप नहीं है कलयुग में, वो भगवान का ही आशीर्वाद है। अगर देखना होता तो इस समय हम सब लोग नरक में सड़ते होते, है ना, इसलिए भगवान की एक कृपा है। पहले के युगों में देखना भी पाप था, विचार करना पाप था, लेकिन अब ये सब भगवान ने छोड़ा, बोला अरे ये इनको अगर देखना सोचना पाप रखेंगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, कंसेशन चल रहा है। लेकिन जैसे ही क्रिया करने जा रहे हैं, करते हैं, तब पाप की शुरुआत हो जाती है। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। बिल्कुल बात, लेकिन कपट भी ना, सामान्यतया देखा गया है कि आदमी बड़ा हो जाता है ना उम्र में, बाद में ही कपटी बनता है। बच्चे के मन में कपट होना बहुत ही कम होता है, जैसे 100 बच्चों में से कोई एक ही कपटी रहेगा जिसका मन में अंदर है और बाहर कुछ अलग है, है ना। बच्चे लोग कपट नहीं कर सकते, वो जो अंदर है वो बोल देते हैं। जैसे एक बार की सत्य घटना हुई, एक बार गोपाल गार्डन स्कूल से मुझे फोन आया कि आपको इस मीटिंग के लिए अभी आना है, ये काम है वगैरह। अब मुझे नहीं जाना था तो मैंने एक बहाना बना लिया कि मैं इस बहाने से नहीं आ सकता हूं। तो मेरी बेटी जो बाजू में बैठी, बोले तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, टीचर ने मना किया है, झूठ नहीं बोलने का। अब इसको, क्योंकि इसका हृदय में कपट नहीं है, तो वो बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। और क्योंकि मेरे हृदय मैं बड़ा हूं, मेरे हृदय में कपट रहेगा, मैंने एक बहाना प्रस्तुत किया। अब क्या करने का। तो वो जो बच्चे के हृदय में कपट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कपटी आदमी के हृदय में भी देखा जाता है कि लंबे समय तक वो अपनी मुखाकृति उस तरह से नहीं बना पाएगा। उसका हृदय का भोग विलास कामनाओं का प्रभाव उसके मुख पे एक दो घंटे के लिए वो रोक सकता है, 5-10 घंटे के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं रोक पाएगा। उसके चेहरे पे वो आ ही जाता है। हाँ, जो लालच है, जो लोभ है, इसीलिए कभी कई बार शास्त्रों में आता है ना कि स्त्री को पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति उसकी और कामुकता से देखता है, और स्त्री उससे सावधान हो जाती है। क्यों? उसका मन में थोड़ी वो पढ़ लेती है, उसके चेहरे पे वो कामुकता प्रकट होती है और स्त्री को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कामुकता से मुझे देख रहा है। तो वो संस्कारी लड़कियां जो रहती है वो समझ जाती है, उससे दूर रहती है। तो कपट से छुपाया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लंबा समय नहीं चलेगा, थोड़ा समय चलता है। और ये देखा जाता है कि जितनी उम्र बढ़ती है लोगों के हृदय में कपट बढ़ता है, लेकिन जितना अच्छा भक्त होता है उसके हृदय से कपट कम होते जाता है, धीरे 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 नहीं जीरो हो जाता है। इसलिए सन्यासियों को देखो, आपको छुपाने की बात करो तो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं नहीं छुपाओ, चलेगा, बोल दो जो है वो। अभी एक सत्य घटना इस्कॉन के साथ हुई है, लेकिन मैं पता नहीं, यहां नहीं बताना चाहिए मुझे। एक पर्टिकुलर मंदिर, एक पर्टिकुलर सेवा के लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गलत काम कर रहा था, तो सन्यासी ने बता दिया कि मत करो ऐसा। वो कपट था, लेकिन वो कपट अच्छे हेतु के लिए था, लेकिन फिर भी सन्यासी ने बताया मत करो। तो डिसाइपल्स लोग को जबरदस्ती जाके बोलना पड़ा गवर्नमेंट को कि हम ये कपट कर रहे थे। अब गवर्नमेंट तो ये समझेगी नहीं कि कितने प्रामाणिक अच्छे भक्त है जो अच्छे कार्य के लिए कपट कर रहे थे, वो भी आके हमको बता दिए थे इनको ट्रबल नहीं करना चाहिए, अब वो उसको ट्रबल दे रहे। अब वो गवर्नमेंट उनको परेशान कर रही है, रेड हुई वहां पे, उनका प्रोजेक्ट बंद करवाने का ट्राई कर रही है, ये सत्य घटना आज के समय में इस समय चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि सन्यासी अच्छे भक्त बन गए तो वो सोचते हैं कपट करना ही नहीं है, चाहे सत्य या सत्य अच्छी चीज के लिए या बुरे चीज के लिए। लेकिन हमारे जैसे छोटे लोग क्या सोचते हैं, अरे भगवान के लिए कर रहा हूं ना, थोड़ा करने में क्या प्रॉब्लम है, वृंदावन जाने के लिए किसी और की टिकट इस्तेमाल कर रहा हूं ना, क्या प्रॉब्लम है, भले ना टिकट किसी और का है, मेरे नाम से मैं निकल रहा हूं ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो भी कपट है, वो नहीं करना चाहिए। टिकट किसी और की है उसको दो, हम अपनी टिकट से निकाल के जाएंगे। वो एडजस्टमेंट करने का जो कपट है ना, वो वृत्ति आगे चल के कहीं ना कहीं गलत जगह में भी एडजस्टमेंट करवाएगी, क्योंकि वृत्ति वही है। कॉन्शियसनेस जो हृदय में है, वृत्ति वो नहीं जाएगी। इस समय सही पर्पस के लिए कर रहे हो, लेकिन गलत पर्पस के लिए भी करोगे, क्योंकि वृत्ति है रहे। तो कपट छुपाया जा सकता है कपट से सब कुछ, लेकिन लंबा समय नहीं, डिफिकल्ट तो होता ही है ना, नहीं हो सकता है। आपको तो पता है पूरे इस्कॉन का इतिहास बहुत ही अच्छी तरह से, जितने लोगों ने कपट किया आज उन लोगों की स्थिति क्या है आप मेरे से अच्छा जानते हैं। उन्होंने कपट कितने साल छुपाए आपको पता है, 2, 5, 10 साल। 10 साल के बाद उनका कपट जगत विख्यात हो चुका है, निकल ही जाएगा वो कपट, ज्यादा दिन नहीं छुप सकेगा। इसीलिए सच्चा भक्त ये सोचता है कि कपट के झंझट में न पड़ूं, जो है वो बता दूं सत्य। दुर्बलता स्वीकार करना भी एक भक्त का लक्षण होता है। और कई बार प्रभुपाद कहते हैं कि गलत कार्य की सजा बहुत होती है, लेकिन दुर्बल व्यक्ति अगर उसे स्वीकार करता है कि मेरा ये गलत कार्य है, तो उसकी सजा कम हो जाती है, और वो आगे चल के उसके हृदय में वो वैराग्य उत्पन्न करता है, क्योंकि वो उसकी दुर्बलता वो स्वीकार कर रहा है। ये इसकी महानता है, वैष्णव की महानता है कि वो अपनी दुर्बलता स्वीकार करे। जैसे कुछ भक्त कहते हैं भाई मुझे तो बहुत भोजन प्रसाद चाहिए, मैं तो बहुत प्रसाद खाना चाहता हूं, अच्छी बात है, गलत नहीं है, वो उसकी दुर्बलता है, वो स्वीकार कर रहा है। ये प्रसाद ही इसको आगे चल के भक्त बनाएगा। जैसे महाहरि प्रभु जिनका देहांत अभी इस्कॉन में थोड़े समय पहले हुआ ना, अभी कुछ एक महीने पहले कैंसर से भगवत धाम गए, तो वो एक्चुअली अपनी दुर्बलता शुरुआत में जब भक्त बन के आए थे स्वीकार किए कि मैं प्रसाद की दुर्बलता से इस्कॉन मंदिर में आया हूं। हाँ बस, तो वो हमारी दुर्बलता देखो आज हमको काम आ रही है, खाने की दुर्बलता जो थी वो काम आ रही है, क्योंकि कृष्ण को सेंटर में रखा और हमने स्वीकार किया कि हमें ये दुर्बलता है, हमें ज्यादा से ज्यादा पिज्जा पास्ता राधा माधव का चाहिए, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, बस समय पूरा हो गया है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।